ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿ ಸಂಗೀನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಬಂಧಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೈವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ನಮೋ ಮಹಾಪತನ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯತೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಮಃ ಗೌರತ್ಪಿತೇ ನಮಃ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧೋ ದೀನಬಂಧೋ ಜಗತ್ಪತೆ ಭೂಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾಕಾಂತ ನಮಸ್ತುತೇ. ಸಪ್ತಕಂಚನ ಗೌರಾಂಗೀ ರಾಧೆ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರೀ ವಿಶ್ವಾಂಶುಕೇ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೇ. ಹಾ ದೇವಿ ಕಾತು ಹರ ಗದಗದಯಾದ್ಯ ವಾಚ ಜಾತೆ ನಿಪತ್ತ ಭೂವಿ ದಂಡವತ ಉದ್ಭಟಾರತಿ ಅಷ್ಟಮುದಶ್ಚ ಜನಶ್ಚೇತ್ವ ಗಂಧೇ ತವ ಗಣೇ ಗಣನಂದ್ಯ. ಅಂಗಶ್ಯಾಮಲಿಂ ಶತಾಭಿರಪಿತೋ ಮಂದೇ ಕುಚೇಂದೀವರಂ ಜಡ್ಜಂಜಾಗುದರೋಚಿತಂ ವಿದಧತಂ ಪಟ್ಟಂಬರಸ್ಯ ಶ್ರಿಯಾ. ಬೃಂದಾರಣ್ಯ ನಿವಾಸಿನಂ ಹೃದಿ ಲಸದ್ದಾಮಾಭಿರಾಮೋದರಂ ರಾಧಾಸ್ಕಂದ ನಿವೇಶಿತೋಜ್ವಲಭುಜಂ ಧ್ಯಾಯೇಂದಾಮೋದರಂ. ಭಕ್ತ್ಯಾಭಿಹೀನಾಪರಾಧಲಕ್ಷ್ಯೈ ಮಾದಿತರಂಗಮಧ್ಯೈ ಕೃಪಾಮಯೀ ಸ್ವಾಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪನ್ನಾ ಬೃಂದೇ ನಮಸ್ತೆ ಚರಣಾರವಿಂದಂ. ಗುರವೇ ಗೌರಚಂದ್ರಾಯ ರಾಧಿಕಾಯೈ ಸದಾಲಯೈ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣಭಕ್ತಾಯ ಸದಭಕ್ತಾಯ ನಮೋ. ಯಂ ಪ್ರವ್ರಜಂತಮನುಪೇತಮಪೇತಕೃತ್ಯಂ ದ್ವೈತಾಯನೋ ವಿರಹ ಕಾತರ್ಯಾಜುಭಾವ ಪುತ್ರೇತಿ ತನ್ಮಯತಯಾ ಸರ್ವೋಭಿನೇದು ತಂ ಸರ್ವಭೂತಹೃದಯಂ ನಿಮಾನುತು. ತವೈವಾಸ್ಮಿ ತವೈವಾಸ್ಮಿ ನ ಜಿಮಾಮಿ ತ್ವಯಾ ವಿನಾ ಇತಿ ವಿಜ್ಞಾಯ ರಾಧಿ ಸಂಯಮಾಮುತ. ಯತ್ ಕಿಂ ಕರೇಷು ಬಹುಶಃ ಖಲು ಕಾತುಮಾನ್ ನಿತ್ಯಂ ಪರಸ್ಯ ಪುರುಷಸ್ಯ ಸುಖಂಡ ಮೌಲೆ ಜಸ್ಯಾಪದಾರಸ್ನಿಧೇ ದೃಷ್ಭಾನುಜಾಯ ಸತಕೇ ವಿಷ್ಣು ಭವನಂಗನು ಮಾರಿಜನಿ. ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಂ ಕಲ್ಪೇಯ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ್ ಈ ಕಥಾ ಹೋಗಿ ಆಜ್ ಕಾ ಅದ್ವಾಸ್ ದಿವಸ ಆಜ್ ಹಮ್ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ್ ಕಿ ಮಹಿಮಾ ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಮೇ ಸಂಕ್ಷೇಪ ಮೇ ಕುಛ್ ಬತಲಾನೆ ಕಿ ಚೇಷ್ಟಾ ಕರುಂಗಾ. ಸುಖದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ನೇ ದ್ವಾದಶ ಸಂಧ್ಯಾತ್ಮಕ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ ಜಿ ಕೋ ಸುನಾಯಾ. ಸುನಾನೆ ಪರ ಸರ್ಪ ಆಯಾ ಉನ್ಕೆ ಬಾಹರಿ ಶರೀರ ಕೋ ಜಲಾ ದಿಯಾ. ಉಸ್ಕೆ ಪಹಲೆ ಹಿ ವೋ ಭಗವತ್ ಧಾಮ ಮೇ ಗೋಲೋಕ್ ವೃಂದಾವನ್ ಮೇ ವೋ ಪಹುಂಚ ಗಯೆ. ಸರ್ಪ ಉನ್ಕೋ ಕೋಯ್ ಭಿ ಸ್ಪರ್ಶ ನಹಿ ಕರ್ ಸಕಾ, ತನಿಕ್ ಭಿ ಕುಛ್ ಕಾ ಸ್ಪರ್ಶ ನಹಿ ಕರ್ ಸಕಾ. ಸುಖದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಜಿ ಚಲೇ ಜಾನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಮೇ ವಹಿ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಜಿ ಉನ್ಸೆ ಸುನೆ ಉಸ್ ಸಭಾ ಮೇ ಭಿ ಥೆ. ಉನ್ಹೊನ್ನೆ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ್ ಕಿ ಕುಛ್ ಮಹಿಮಾ ಬತಲಾಯಿ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಕೆ ಅತಿರಿಕ್ತ ಔರ್ ಕುಛ್ ಭಾಗವತ್ ಕಿ ಮಹಿಮಾ ನಹಿ ಇಸ್ಸೆ ಬಢ್ಕರ್ ಜೀವೋ ಕೋ ब्रजरस मिलता है, इससे बढ़कर के कुछ हो ही नहीं सकता। वैसे श्रीमद्भागवत कल्पतरु का अत्यंत प्रपक्व सुंदर मधुर फल है, जिसमें कोई भी हे अंश नहीं है। कभी वो वंशा कल्पतरु है, जो चाहेगा वही दे देते हैं, जो चाहे कोई मनुष्य। बल्कि स्वर्गलोक में स्थित जो कल्पतरु हैं, वो कृष्ण प्रेम नहीं दे सकते, भगवत प्रेम। किंतु श्रीमद् भागवत रूपि कल्पवृक्ष सब कुछ देने में समर्थ है। इसीलिए अंत में सुखदेव गोस्वामी जी ने जो कहा, उसी को सुत गोस्वामी जी समकालीन ऋषियों को भी बतला रहे हैं। श्रीमद् भागवतम सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इच्छते तत्र सामित्रित्वस्य नान्यत्र स्यात् अरति वचि। जिनको ये श्रीमद् भागवत वेद वेदांत श्रुति स्मृति जितने उपनिषद इत्यादि जितने भी हमारे भारतीय वांग्मय हैं, शास्त्र हैं, पीछे से उसमें महाभारत भी आया, रामायण भी आया, उसके अनुगत समस्त जितने भी भारतीय संस्कृति में शास्त्र हैं, सबका सार एक साथ यदि दिया जाएगा तो श्रीमद् भागवत सबका सार। यूं गीता के लिए भी कहा गया है, किंतु उसमें सूत्र है केवल, और श्रीमद् भागवत में विस्तृत रूप में उस सबका वर्णन है। गीता में जो बतलाया गया है वो समझ में नहीं लोगों के आए, उसमें आत्म अनात्म विवेक उसमें आएगा, क्या चीज आत्मा है क्या चीज अनात्मा, बस यही ज्ञान थोड़ा सा हो जाएगा। प्रारंभिक पुस्तक है और श्रीमद् भागवत जो है पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, गीता समाप्त करने के बाद में तब ये श्रीमद् भागवत, ये पारमहंस की संहिता है, समस्त वेद उपनिषद का शास्त्र। यहां तक कि वेदांत का सार, गायत्री का भाष्य, वेदों का अर्थ, उपनिषदों के अर्थ को प्रकाशित करने वाला महाभारत का भी सार, ये गीता है, भागवत है। तो सब वेदांत सारंभी श्रीमद् भागवतम इच्छते तद रस अमृत तृप्तस्य, उसके रस से जो तृप्त होने वाले व्यक्ति हैं कौन है आगे बतलाएंगे। श्रीमद् भागवतम पुराण अमलम जद वैष्णवानाम प्रियम, वो वैष्णवों के ही प्रिय हैं और किसी के नहीं। स्वार्थ के लिए कोई उसको आदर करे, किंतु वैष्णव लोगों का ये हृदय का धन श्रीमद् भागवत है। अद्वैतवादी मायावादी कर्मी ज्ञानी इन सब के लिए नहीं, ये श्रीमद् भागवत पारमहंसी संहिता है, वैष्णवों का ये सबसे अधिक प्रिय है। तो इसके रस से यदि कोई तृप्त हो गया, कहीं भी उसकी किसी भी शास्त्र में रुचि नहीं रह जाती, किसी भी शास्त्र में रुचि नहीं रह जाती, किसी फल में उसकी रुचि नहीं रह जाती, एक ऐसा ये अद्भुत ग्रंथ है। इसीलिए वो कहते हैं निम्न गानां यथा गंगा देवानां अच्युतो तथा वैष्णवानां तथा संभव पुराणां इदम्। जिस प्रकार से नदियों में गंगा, देवों में अच्युत, अच्युत माने कृष्ण, और वैष्णव में जिस प्रकार से संभव श्रेष्ठ हैं, समस्त पुराणों में भी श्रीमद् भागवत ही सर्वश्रेष्ठ है, सबके चूड़ामणि है। श्रीमद् भागवतम पुराणम जद वैष्णवानाम प्रियम जस्मिन् परमहंसमेकम अमलम ज्ञानम परम गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहित नैष्कर्म आविष्कृत तत्व सुपर्ण विचारण पर भक्त्या विमोचन श्रीमद भागवत अमल पुराण है। अमल माने इसमें मल नहीं है। इसको छोड़कर के जितने भी पुराण हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, वो कुछ कुछ मल युक्त हैं, मैलापन उनमें है। जैसे वेद में मलिनता क्या है, उसका यज्ञ, यज्ञ करके सांसारिक फल लेते हैं, स्वर्ग का फल लेते हैं, फिर वहां से गिर पड़ते हैं। इसलिए ये वेद का वेद इत्यादि कुछ मलिन फल वाले हैं। पुराणों ने इसको छोड़कर के और जो 17 पुराण हैं, उनमें कुछ कुछ मल है, अतः तो संसारी इत्यादि उसमें फल की भावना रहती है, शरीर के सुख के लिए, शरीर की कामनाओं के लिए उसमें बातें बतलाई गई। शुद्ध आत्मा की बात उसमें कहीं नहीं है। जैसे श्रीमद्भागवत निर्भीक होकर के सत्य बात कहेंगे, किसी को खराब लगे या अच्छा उस पर विचार, उनका कल्याण होना चाहिए। शुद्ध सत्य की बात, सत्यम परम धीमहि, श्रीमद्भागवत सत्यम परम धीमहि, जिसमें मोहयंत जत सूरय, चूरी लोग अर्थात विद्वान लोग भी, मुक्त पुरुष भी जिसमें मोहित हो जाते हैं, उस विषय को श्रीमद्भागवत बतलाते हैं। यदि सचमुच में एक श्रीमद्भागवत का कोई श्लोक, एक अक्षर भी यदि कोई पालन करे, तो संसार से ऊपर होकर के एकदम भगवत प्रेम को जरूर पा ही लेगा। इसलिए ये वैष्णवों के अत्यंत प्रिय ग्रंथ हैं। इसमें मल नहीं है कुछ, इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि मुक्ति भगवान देते हैं। ये पढ़ने का फल मुक्ति है, इसके पढ़ने का फल संसारिक सुख है, ये नहीं कहेंगे। ये कहेंगे जो पढ़ेगा राधा कृष्ण के चरणों में प्रेम होगा, एकदम साफ निष्कंटक हो जाए। कोई भी शरीर संबंधी कोई लाभ इत्यादि की इसमें बात नहीं, देह में आत्मा का अभिमान करने वाली कोई भी बात नहीं कहेंगे। प्रारंभ से ही जस्मिन परमंत, जिन्होंने संसार को संपूर्ण रूप से सुखदेव गोस्वामी की भांति, नारद की भांति, जो संसार से एकदम संपूर्ण रूप से अनासक्त हो गए, कहीं भी कहीं आसक्ति नहीं है, ऐसे महापुरुष जो हैं, जो जदा कदा इस पृथ्वी पर विचरण करने वाले हैं, ऐसे सुखदेव प्रभु और ऐसे ऐसे लोगों जो पारमहंस हैं, उन्हीं के लिए पारमहंसम एकम अलम ज्ञान पर। परम ज्ञान क्या है? भक्ति, प्रेम, इसी में ये कहा गया, तत्र ज्ञान विराग भक्ति चैतन्य। जब भक्ति जी कर्नाटक में जन्म लिया, दक्षिण भारत में जन्म लिया, प्राचीन भूत ही जन्म नहीं, प्राचीन भूत हुई, कर्नाटक में पली पोसी, महाराष्ट्र में बड़ी हुई, और फिर गुजरात में जब गई तो बूढ़ी हो गई, इनके लड़के भी बूढ़े हो गए। उनके लड़के थे ज्ञान और वैराग्य, वो भी अपने इनके खास लड़के नहीं थे। कैसे लड़के थे? दत्तक लिए हुए, गोद लिए हुए लड़के थे। इनका एक ही अपना बेटा है, प्रेम बस, और कोई नहीं, अपना खास। और दत्तक ले लिया ज्ञान और वैराग्य को, तो ये लोग तो बूढ़े हो गए वहां। फिर वहां से वृंदावन में आई, वृंदावन में वो नई हो गई, किंतु लड़के बूढ़े रह गए, क्योंकि वृंदावन में ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछता, केवल भगवत प्रेम से इनका संबंध होता है। इसलिए इनके लड़के बूढ़े बने रहे ज्ञान वैराग्य। अंत में नारद जी से उनकी वृंदावन में भेंट हुई और नारद जी ने उनको कहा जे मैं इसके लिए उपाय करता हूं। तो वो सनक सनंदन सनक कुमार से चारों भाइयों से मिले और उनसे उपाय पूछा जी इनके लड़के कैसे थे ये नवजीवक। उन्होंने कहा आज जैसे श्रीमद् भागवत इसको सुनाइए जैसे भक्ति जी जो नवज्योति हुई है और किशोरी हो जाएंगी और प्रेम रस से भर जाएंगी और ये दो लड़के भी नए हो जाएंगे भागवत सुनाइए। इसलिए यहां कहा ज्ञान विराट भक्ति के सहित इसमें आविष्कृत हुआ है। वो ज्ञान कैसा निष्कर्मम ज्ञानम निष्कर्म ज्ञान जिसमें कोई आसक्ति नहीं है निष्कर्म निर्मल ज्ञान जो पारमहंसों के लिए होता है। इसलिए निष्कर्म विशेषण होगा ज्ञान का निष्कर्म ज्ञान विराग के सहित भक्ति जी इसमें प्रवृत्त होती है इसके श्रवण करने से जो कृष्ण को भी वशीभूत कर लेती हैं। तत्श्रवण इनका सुनने से विपठन एक श्लोक भी कोई श्रवण करे और किसको बात किया पढ़े श्रवण सुने और विचार यदि करे तो संसार से मनुष्य मुक्त होकर के कृष्ण के प्रेम को वो प्राप्त हो जाता है सहज ही। यहाँ पर भागवत का महात्म्य दो प्रकार से मिलता है एक पद्म पुराण में और दूसरा स्कंद पुराण में। पद्म पुराण वाला साधारण लोगों के लिए उसमें कुछ गड़बड़ियां मालूम होती हैं उसमें कुछ उपाधियां हैं उसमें कुछ मुक्ति इत्यादि का उल्लेख है किंतु स्कंद पुराण वाला जो है बहुत ही सुंदर है और सिद्धांत मूलक है। हम पहले तो आप लोग साधारण रूप में सुने होंगे इसके संबंध में वो पद्म पुराण वाला धुंधकारी और ये सब की बातें सब। स्कंद पुराण में कुछ कुछ वैष्णव संबत और शुद्ध उसका कुछ इसमें मिलता है स्वरूप श्रीमद् भागवत। इसमें से हम कुछ कुछ जानने लायक बातें हम बतलाएंगे कैसे सुनना चाहिए भागवत कब इसका होना चाहिए उसकी तिथियां इत्यादि कब हैं किस भावना से इसको सुनना चाहिए सुनने वाले कितने प्रकार के होते हैं पाठक भी कैसा होना चाहिए और इसका यथार्थ फल और गौण फल क्या है जैसा उचित है वैसा इसमें वर्णन कर रहे हैं। हम उसमें से थोड़ी बातें कुछ बतलाएंगे। कृष्ण जी अपने लीला में अप्रकट लीला में चले गए। भगवान की लीलाएं अप्राकृत और नित्य होती हैं। साधारण रूप में भगवान की लीलाएं दो प्रकार की मानी गई एक व्यवहारिकी और एक वास्तविक। वृंदावन ब्रज की जितने भी लीलाएं हैं ये वास्तविक लीलाएं हैं और सृष्टि इत्यादि जगत का व्यापार और उसमें जो हम रह रहे हैं और जो जिसको भोग कर रहे हैं हम और जिस रूप में है इसको व्यवहारिक कहा जा सकता है। वो लीलाएं नित्य होने पर भी उत्तम अधिकारी महाभागवत लोग सब समय उसका दर्शन कर सकते हैं हम सब नहीं दर्शन कर सकते। वो जदा कदा जिस समय में वो प्रकट होती हैं उस समय में उसको लोग दर्शन करते हैं। जैसे कृष्ण लीला के समय अभी 5000 वर्ष पहले कृष्ण की लीला प्रकट हुई थी। प्रकट माने क्या लीला भी वृंदावन ब्रजमंडल में चल रही है भगवान की योग माया की शक्ति से हम लोगों के साथ में कुछ संपर्क हो जाने से उस समय लोगों ने उस लीला को देखा किंतु लीला अभी भी चल रही है उसमें भी चल रही है, पहले भी चलती है। ये नित्य लीलाएं हैं, वास्तविक लीलाएं हैं। और अभी हम जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा विवाद ये सब जो भगवान की ये सब यही बहिरंग माया की लीलाएं हैं। हम लोग इसको यथार्थ समझ लेते हैं, कितने गड़बड़ी हो जाती है। तो भगवान की लीलाएं नित्य हैं। कृष्ण चंद्र जी लीला करने के बाद में 125 वर्ष इस पृथ्वी पर अपने लीलाओं के साथ में अंतर्ध्यान हो गए। सुखदेव गोस्वामी जी को सुख के रूप में उनको छोड़ गए। अब होने के बाद नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी और ऋषि लोग भागवत की कथा कह रहे हैं और सुन रहे हैं। उस समय में जब महाराज युधिष्ठिर पांडवों के साथ द्रौपदी के साथ में स्वर्गारोहण किए, स्वर्गारोहण माने क्या, अर्जुन द्वारका से लौट रहे हैं, बड़े दुखित हो रहे हैं। उस समय में युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, अरे तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई, रास्ते में तुम्हें कोई लूट लिया ना कि अथवा तुमने कोई दुष्कर्म कर दिया, धर्म के विपरीत तुमने कोई काम कर दिया, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों? तब अर्जुन रोने लगे, जिनके वजह से हम लोग विश्व विजयी पांडव कहलाते थे, मैंने अपने धनुष से शंकर जी को भी प्रसन्न कर दिया, ये सब शरीर ही स्वर्ग में चला गया, देवताओं ने मुझे इंद्र के साथ में आधा स्वर्ग का सिंहासन देकर के बैठा दिया, आज वही मैं अर्जुन, मेरा गांडीव धनुष भी आज मुझसे उठा नहीं, और मैं उनके रानियों को ला रहा था, कृष्ण प्रकट लीला में प्रवेश कर गए और मैं धनुष को उठा नहीं सका, आज वो प्रभु इस जगत से चले गए। उनकी लीलाओं का आदि से अंत तक का वर्णन करते 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 रोते रह गए बेचारे। इसके बाद में युधिष्ठिर ने देखा अब तो कलयुग आने वाला है, आई गया, प्रवेश कर गया, अब हम लोग को आना नहीं चाहिए, बस किसी के से कुछ ना बोल करके घर से निकल गए। पीछे से भीम निकले, उसके पीछे अर्जुन, उसके पीछे नकुल और सहदेव, और उसके पीछे द्रौपदी, सभी लोग पहुंच गए, एकदम हिमालय में चले गए, हिमालय में चले गए। इधर में कैसे गए, कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी, उसके पुत्र अनुरुद्ध जी, उसके पुत्र वज्रनाभ, उस समय छोटे से बालक थे, और परीक्षित महाराज कुछ जुआवस्था में थे, परीक्षित को राजगद्दी पर बैठाया और वज्रनाभ को ले आए मथुरा, और यहाँ की राजगद्दी बना करके उसमें चारों तरफ में बंद था, यहाँ पर मथुरा इत्यादि सब स्वागत सब जंगलों से भरा हुआ था, कोई चिन्ह भी नहीं था जब कृष्ण की कौन सी लीला कहाँ पर हुई, उन्होंने इनको यहाँ का राजा बना दिया और परीक्षित के ऊपर में भार दिया, जे इस बच्चे को तुम संभाल करके और तुम ही इसको देखना, जब बड़ा हो जाएगा इसको अच्छी तरह से छोड़ देना। इसके बाद में जब कुछ दिनों की बात हुई वो चले गए, महाराज परीक्षित और बड़े हो गए, वज्रनाभ अब युवावस्था में पहुंचे। एक दिन परीक्षित महाराज जी मथुरा में आए, वज्रनाभ जी ने इनका बड़ा सम्मान किया, इनकी मैया रोहिणी इत्यादि थी, 16,000 मैसियां उस समय थी, लोग कहते हैं कि जिसको उनको लूट लिया, अर्जुन ले जा रहे थे, नहीं यहाँ पर 16,000 महिषियों का ही जिक्र है, वो वहां पर थी, उन सब में रोहिणी इत्यादि थी, रुक्मिणी जी सत्यभामा तो कृष्ण के साथ में चली गई और जो बाकी थी सुलहज्जा वो यहाँ पर थी। अब इन लोगों ने भी परीक्षित महाराज जी का आदर किया। परीक्षित महाराज जी इनको बोले, जो कृष्ण ने हमें बचाया, प्राण दिया, मैं उनका ऋणी हूं और हमारे वंश को महाभारत रूपी युद्ध रूपी महासागर से उनको पार करा दिया सहज ही, जिसमें बड़े बड़े मगर थे। कौन? भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ये सब बड़े बड़े थे। ये लोग विश्व में सबसे बड़े माने हुए थे, इनको कोई भी नहीं हरा सकता था। किंतु कृष्ण की कृपा से हमारे पितामह माने अर्जुन ने कृष्ण की सहायता से ऐसे महासमुद्र को भी अनायास ही बच्चे के पूर में पानी के समान उनको लांग करके चले गए। मैं उन लोगों का ऋणी हूं, बतलाओ तुम्हारा मैं क्या कल्याण करूं। इन्होंने कहा, आप भी हमारे पिता तुल्य हैं। मैं यहां पर आया मथुरा में, युधिष्ठिर महाराज ने मुझे राजगद्दी पर बैठाया, किंतु न यहाँ कोई प्रजा है, न कोई व्यक्ति है, न कोई चिन्ह कुछ है, जंगल में हमको राजा बना दिया। मेरा मन नहीं लगता यहाँ। उन्होंने कहा, जय एक बात करो, मैं तुम्हारे वंश का तारिणी हूं, मैं उसके बदले में कुछ ऋण चुकाना चाहता हूं। एक बात करो, सांडिल्य ऋषि को बुलाओ, वो नंद बाबा के पुरोहित और सब कुछ जानने वाले हैं, उनको बुलाओ और उनसे परामर्श करके तुम्हारा पहला काम यह है कि मैं वहां से हजारों बड़े बड़े धनी मानी बनिए और कुलीन ब्राह्मण, क्षत्रिय और ऐसे ऐसे लोगों को दूंगा जो पहले मथुरापुरी बसाई जाए और सुंदर रूप से उसका निर्माण किया जाए, राजभवन उसमें बनाया जाए। सांडिल्य ऋषि ने उनको जैसा परामर्श दिया, परीक्षित महाराज ने उसी प्रकार से इनसे कह करके वैसा ही कराया। बड़ी सुंदर मथुरापुरी बसी और इंद्रप्रस्थ से हजारों बड़े बड़े धनी मानी अनुभवी बनिए अपनी समस्त सारी सारे धनों के साथ में यहाँ आए। बड़ी बड़ी विपिनियां स्थापित की, विपिनी माने दुकान इत्यादि, बिजनेस आरंभ किया और सब दूसरे जाति ब्राह्मण लोग भी पुरोहित इत्यादि के लिए बुलाए गए, ब्राह्मण लोग यहाँ पर बसे और दूसरी जातियों के लोग भी बसे। और युधिष्ठिर महाराज ने कहा, गोवर्धन में दीर्घपुर, दीर्घपुर माने दीघ, काम्य वन, मथुरा और सब कुछ स्थानों का नाम बतलाए, इन सब में चौकियां स्थापित करें और अपना हेड क्वार्टर बनाए और महाबन है ऐसे सब स्थानों में और वहां पर धीरे 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 नगर के रूप में बनाए गए। और जहां जहां पर कि कृष्ण की अत्यंत अंतरंग लीलाएं हुई, जैसे वृंदावन, राधा कुंड, श्याम कुंड, काम्य वन, हंडीर वन, लक्ष्मी का बेल वन, फिर मानसरोवर है, स्वादक वन इत्यादि जहां जहां पर है, नंदगांव में भी, बरसाना में, ये सब स्थानों का बहुत विकास किया जाए और अच्छे अच्छे लोग वहां पर बसाए जाएं और ऐसा कोई चीज बनाया जाए जो कृष्ण की उसी लीला की उद्दीपना लोगों में हो, जैसे राधा कुंड और श्याम कुंड उन्हीं का बनाया हुआ है। कृष्ण लीला की स्मृति के लिए रस स्वरूप है ना, इसलिए रस स्वरूप उसको बनाया गया। ये कुसुम सरोवर, मानस गंगा, पावन सरोवर, बिमला कुंड और जहां जहां पर विख्यात कुंड देखते हैं, ये सब बज्रनाथ प्रभु जी के बनाए हुए, उन्हें परीक्षित महाराज जी के द्वारा इनको प्रेरणा दे करके सांडिल्य मुनि ऋषि के अनुसार ये सब बनाए गए। उन्होंने कहा, सांडिल्य ऋषि ने, जो देखो भगवान का स्मरण करके तुम जिस स्थान पर जाएगा उसी स्थान पर उस लीला का महात्मा तुम्हारे हृदय में स्फूर्ति होगी और तुम ठीक उसी तरह से उसकी स्थापना करना। इसलिए जहां जहां पर उनकी लीलाएं हैं वहीं पर, जैसे वृंदावन में गोविंद देव, मथुरा में हरिदेव केशव देव, और गोवर्धन में हरिदेव, और उधर में बलदेव, ये चार देव। इसके अतिरिक्त गोपीनाथ जी, मदन मोहन, बिहारी जी इत्यादि यहाँ पर सब प्रकाश किए, और सब जगहों में जो जो प्रधान प्रधान चीजें हैं वो सब उन्होंने वहां पर सब किया। कहीं पर पाठ पीठ किया, कहीं पर मंदिर स्थापित किए, कहीं पर कुछ किया, समस्त ब्रज में जहां जहां कृष्ण की जैसी जैसी लीलाएं थी उनको सब सांडिल्य मुनि और परीक्षित महाराज जी को साथ में लेकर के और उस सबका